ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज का शरीर सोने की तरह चमकता हुआ दे दीप्यमान, गोरंगार शेर की तरह बैठे रहे एकदम, इतना सुडोल महात्मा मंडली में शरीर देखने को कमी मिला करता था। देखने में कोई बीमारी नहीं, डायबिटीज आस्ते आस्ते थी। अंतिम समय में जब शरीर छूटने का समय आया महाराज का, महाराज बोले हो एक महीना भर पहले से तूफान आया, कुछ पेड़ उखड़ गए। बोले तूफान नहीं है, ये भविष्य है, ये पेड़ नहीं उखड़ा है, ये भगवान भविष्य दिखा रहे हैं। फिर ऐसी बातें कहने लगे, फिर कहने लगे कि देखो मैं देख रहा हूं कि आश्रम में कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, बस नदी है, जंगल है, पहाड़ है, आश्रम भी नहीं है। मैं बैठा पर हूं, देख रहा हूं, लेकिन मैं भी नहीं हूं। अब सब उजाड़ खंड है बेटा। इतने में वो गणेश पंडित आ गए। अरे पंडित भला आ गए, अब तोरो बुढ़ोती हमरो बुढ़ोती, अब आखिरी समय है, तीर्थ व्रत जो कुछ करना हो कर लो। तो पंडित बोले महाराज संत कहां मरते हैं, मरते तो हम लोग हैं, संत तो उस दिन मर जाते हैं जिस दिन स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, शरीरों का संबंध छूट जाता है, स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं, फिर शरीर धारण ही नहीं करना पड़ता है। शरीर धारण करना शरीर त्यागने का सिलसिले से मुक्ति मिल जाती है, वो स्वरूपस्थ होते हैं। फिर शरीर जब तक है तो वो केवल लोक हित के लिए ही होता, उनके लिए तो कुछ भी नहीं। पंडित सत्संगी रहे, गणेश नंबरदार पथरा गांव के, और फिर सत्संग चला, वो तो चले गए। अब रोज ये शरीर अंत की बात चलने लगी, हमें बैठा देख भर रहे हो, मैं हूं नहीं। हम लोगों ने कहा महाराज शरीर रखा जाए तो? बोले हो राम भी नहीं रखे, कृष्ण भी नहीं रखे, बड़े बड़े महापुरुष हुए, किसी का तो शरीर नहीं दिखाई देता, किसी न किसी बहाने से शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। शरीर तो त्याग देंगे लेकिन मैं सहज सूक्ष्म स्वरूप से मैं सदैव विद्यमान रहूंगा इस आश्रम पर, इस जगह पर, कल्याण करता रहूंगा, जो भी श्रद्धा से याद करेगा मैं उसकी भली प्रकार देख रेख करूंगा। अत्रि महाराज वो विद्यमान है। वैसे तो मैं न मरी हूं, कोई गोली मार दे तो मर जाए। तो हम बोले महाराज गोली से मरने में बुखार से मरने में फर्क क्या है, बोले यार कोई निमित्त होता है ना सज त्यागने का। एक जौनपुर के सेठ साधु हो गए थे वृद्ध, उनके नाम बंदूक थी वो भी लिए दिए चले गए, क्यों कहां छोड़े, वो आश्रम में फेंकी पड़ी थी। बोले ये तू अपने नाम करा ले, नाम से का। और एक ठाकुर थे उन्होंने लाके एक ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, वो भी पड़ा था, ये भी अपने नाम करा ले। हम बोले गुरु महाराज हम क्या करेंगे ट्रैक्टर और बंदूक, अंदर वाली चीज में कमी न रहे और बाहर वाली हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सृष्टि की कोई वस्तु नहीं चाहिए। बोले मैं हूं जानत हूं तो के कुछ नहीं चाहिए, बार बार शरीर त्याग, बार बार शरीर त्याग जब सुना तो हम बोले महाराज हम क्या करेंगे, हमें बंदूक नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपके अंदर वाली जो वस्तु है उसमें तो हवा भर कमी न रहे और बाहर वाला हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें महाराज स्वर्ग नहीं चाहिए, सृष्टि में तो कुछ है ही नहीं जिसकी हम कामना करें, अंदर वाली भगवान के पथ में जो वस्तु है उसमें रंच मात्र भी कमी आभास न हो, ये हम क्या करेंगे। बोले हमें मालूम है तुम्हें नहीं चाहिए, तोरे नाम हुई तो यहां पड़ा रही, नहीं तो जहुआ जात हो जाए। तो हम बोले महाराज है ये क्या जो जहुआ जात हो जाए, न रही तो क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने कहा महाराज ऐसा होना कदाचित शरीर छूटना ही है, तो शरीर छूटने के 10 दिन पहले ये आश्रम नीलाम कर दिया जाए। बोले फिर भंडारा कर दिया जाए, दुनिया भोजन करे, और जब कुछ भी नहीं रह जाए तब शरीर त्याग दें। जो महापुरुषों का भंडारा बाद में होता है ना सही छूटने के बाद, वो आप पहले ही कर डाले। बोले तुम लोग क्या करी हो। हम बोले आप यहां कुछ लेके आए थे क्या। नहीं, एक कमंडल था एक छड़ी थी, जो भीतर वाली वस्तु भरपूर रहेगी तो जहां बैठेंगे वहीं आशीर्वाद रहेगा, तो वहीं पड़े रहेंगे, खाली दो रोटी खाना भजन ही तो करना है। महाराज ने कहा आश्रम रहे तो हर्जा क्या है। हम बोले महाराज साधक लोग कहीं बाहर मुखी ने हो जाएं कि गुरु महाराज ने यहां 10 पेड़ लगाए थे आम के, तो ये विस्तार करके 100 हो जाए। गुरु महाराज कहा करते थे कि इस पहाड़ के ऊपर अत्रि महाराज निवास करते थे, वहां भी कुछ आश्रम जैसा बन जाए, कहीं ईटा पत्थर में उलझने जाए और आपकी अंतरंग विद्या भूल न जाए, इसलिए विघ्न हो सकता है भगवान। महाराज ने यहां ये बात कही थी, यहां ऐसा बन जाए, यहां ऐसा हो जाए, तब फिर 10 मिनट तक चुप रह के बोले करे कौन चीज नीलाम कर दूं, ये जहां मैं बैठा हूं ये जो मकनवा पीछे है ना, ये पहले ही से सिद्ध बाबा के समय से, ये मैं नहीं बनवाए हूं, आगे वो बगीचा लगाए वो गवर्नमेंट का है, सचमुच गवर्नमेंट का था वो, मैं जो श्रद्धा बस बगीचा लगाए पड़ा वो हमारा वो भी नहीं है। हमारे पास बेटा ये एक गद्दा और 2 तकिया है, बोल कौन सी नीलाम कर दूं, है काम और पास जो मैं नीलाम कर दूं। वास्तव में शरीर जब छूटा तो गद्दे के नीचे कोई पैसा फेंक जाए, जैसे आप लोग कोई 2 रुपया, कोई 10 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा, उस टाइम यही चढ़ोतरी रही है, तो गद्दा का कोना उठाकर नीचे फेंक दिया जाए। और जरूरत हो कोई सामान मंगाने से उसी में से कोई भी निकाल के ले जाए और सामान ले आया करे। बाजार जहां से 15-20 किलोमीटर है चित्रकूट, वहां से जब गद्दा उल्टा गया तो 350 रुपया निकला। तो महाराज कहा करें, हमारे पास विश्व बैंक है, मैं विश्व को खाना खिला सकता हूँ, उस विश्व बैंक में तो 350 रुपया निकला। ये तो थी विश्व बैंक परमहंस जी की। जब आवश्यकता पड़ती है तुरंत हाजिर हो जाया करे महाराज के पास। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। अंतिम समय में महाराज ने सबको आशीर्वाद दिया तो भगवान आनंद जी को कहा, एक और थे उनसे कहा, पता नहीं किस किस से जाओ, अब तुम्हारी सब पूर्ति हो जाएगी, तुम्हें मोक्ष सहज मिल जाएगा। और हमों से कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति समझ लो, हो गई। अब भविष्य हमारी कृपा से हो गई, मैं देत हूं तुम्हें प्राप्त हो गई। तो झटके में हमारे मुंह से निकला, गुरु महाराज अपने बेटों को सबे कहते, तुम राजा है, तुम बादशाह है, लेकिन लड़का लड़का ही रहता है तो दुलार की भाषा हुई। उसके अनुरूप स्वरूप दिखाई पड़े, पापों का अंध दिखाई पड़े, तब तो महाराज के हमरे लगे, जो हमरे पास से हटिए तब ना, हमरे भजन करके हम प्राप्त करें तब ठीक है। बोले भजन अब तो से न हुई। हम बोले हो ही काहे नहीं, अबे आयु भी ठीक है, लगन भी ठीक है। बोले न हुई। अंतर मन में हमरे ये भाव रहे कि भजन में सूत बराबर कमी न रहे, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
एक बार हम इन्हें कह दिया, कुछ मुंह से निकल गया तो बोले, तुम बात क्या कहता है, गोली मारता है। फिर बात बदल के बोले, तुम लोग गोली मारते हो। हम बोले, अरे भगवान, कहते रहे गोली से मरेंगे, हमें गोली हो गए का। तुम बात क्या कहता है, गोली मारते हो, फिर तुम लोग गोली मारते हो, कैसे कहूं छेद चली जाते। बड़ी सवेरे सत्संग शुरू किया, राम 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 जीहा, जोलो तूने जपी है, तोलो तू कहूं जायती हूं ताप तपी है, स्वर्ग में चले जाओगे तभी तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। इंद्र ऊपर बैठा है, मैं नीचे बैठा हूं, ताप नहीं पिंड छोड़ेंगे। सूर्य सर तीर बिनु नीर दुख पाइये, सूर्य तर उतरे तो ही दारी दशतई है, जागत बागत सपने न सुख सोई है, ओ जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छुटबे के जतन विशेखी बंद हो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सनी खाएगो, तुलसी तिलोक तिहू काल तो से दीन को, राम नाम ही सोंगति जैसे जल मीन को, राम 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 जिया जोलो तुन जपी है, तोलो तू कहूं जाए ती हूं ताप तपी है, राम राम केवल राम रे जीवा जब तक तू नहीं जपोगे, रे जीव जब तक नहीं जपोगे तो लो तू कहूं जाओ, स्वर्ग में भी चले जाओगे तो तीनों ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। तीन ताप देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। एक तो राम राज में किसी को नहीं व्यापता, दूसरा नाम जपोगे तो तुम्हें भी नहीं व्यापेगा। देह में पीड़ा होना, देहिक ताप, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अप्रत्याशित प्रकोप हो गया, देवी प्रकोप, देविक ताप, देहिक देविक भौतिक भौतिक ताप जो प्राणियों के द्वारा प्राणियों को कष्ट होता है वो भौतिक ताप, इनमें से कोई न कोई ताप तुम्हारा पीछा करता रहेगा। यदि राम नाम जपेगो तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। तुम गंगा किनारे चले जाओगे एक एक घूंट पानी के बिना तड़प के मर जाओगे। क्या किसी बैल को पानी से 4-6 इंच दूर बांध दे मुंह न पहुंचे तो गंगा जल किस काम का, वो देखता अवश्य है, जब तक कि मुंह न पहुंचे पेटे में तो जाएगा नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाओगे तब भी दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी। कल्प वृक्ष है भगवान स्वयं, सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। तुम सुर तरु कल्प वृक्ष हो, तुम काम धेनु हो, ब्रह्मा विष्णु महेश चरणों की वंदना करते हैं, भगवान ही कल्प वृक्ष है, भगवान ही कामधेनु है। वहां पहुंच जाओगे तभी तड़प के मर जाओगे, दरिद्रता नहीं पिंड छोड़ेगी। केवल राम का भजन और राम नाम का जाप नहीं करोगे, अन्य छूटने के बहुत से उपाय करोगे, देवी इलम क्लिम चामुंडा और पता नहीं क्या क्या अन्य तरीकों से छूटबे के जतन, विशेखी बंद हो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सनी खाएगो। अन्य तरीकों से छूटने के जतन करोगे और भी विशेष बंद जाओगे, क्योंकि भगवान एक, पाने की विधि एक, रास्ते में मिलने वाली सुविधा संरक्षक एक, तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिया तो तुम मिलेंगे नहीं। जाना है मैं काशी तो इस रास्ते में जो मिलेंगे सिम्टम वही तो मिलना चाहिए, और जाना है काशी और पकड़ लिया राजगढ़ का रास्ता तो न भगवान की संरक्षण सुविधा वो भी नहीं मिलेगी, आधार भी नहीं मिलेगा और काशी भी नहीं मिलेगी। छूटबे के जतन विषय की बंद हो जाएगो, होई है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। विष हो जाएगा भोजन, अमृत के सामने खाओगे, अमृत तो भगवान खुद है, आत्मा अमृत तत्व है, शाश्वत सत्य है, सनातन पुरुष है, इसी ने शस्त्र काट सकती है, ने अग्नि जला सकती है, ने वायु सुखा सकती है, ने आकाश विलय कर सकती है, मृत्यु से परे शाश्वत है, सनातन है, अमृत तत्व है, और विधाता नश्वर, इससे उत्पन्न दीति अदिति की संतान है नश्वर, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन, सृष्टि रचिता विधाता, उससे उत्पन्न सारी सृष्टि पुनरावर्ती स्वभाव वाले, पुण्य मृत्यु और पुण्य जन्मने वाले हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता अर्जुन, इसलिए तुम मेरी शरण आ। नाम हमने अमृत दे रखा है नहीं तो यह विश्व भोजन जो सुधा सानी खाएगो,
क्योंकि सुधा तो स्वयं भगवान है, उसको तो हम छोड़ के बैठे। अब सुधा नाम धरने से सुधा हो तो नहीं जाएगा। छुट वे के जतन विषय की बंद हो जाएगो, कोई है विश्व भोजन जो सुधा सनी खाएगो। तुलसी तिलोक तिहू काल तो से दीन को, राम नाम ही सोगति जैसे जल मीन को। तुलसीदास कहते हैं रे तुलसी, तीनों लोक तीनों काल में तेरे ऐसे दीन के लिए तो राम नाम एक गति है। ये भजन बड़े सवेरे शुरू किया गुरु महाराज ने 6 बजे, दिन भर इसी आशय का चलता रहा उपदेश। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, दिन भर चला। उतना उपदेश वर्ष भर में गुरु महाराज ने कभी नहीं दिया। अंत में बोले, हे सब फाटक बंद करो, ताला लगा दो। एक इतना सा रेडियो रहे उसे केवल समाचार सुना करे। समाचार जब आवे फलानी जगह योजना बनी है, पुलिया का पास हो गया है, वहां नदी में पुल भी पास हुआ है, वहां ये हुआ, वहां वो हुआ, वो मीटिंग किया, नेता ने ये कहा, ये आश्वासन दिया, मारो सार कुछ नहीं हो समाचार में, चाय फीके भीतर बैठ के बतियावत है। वहां पहाड़ गिर पड़ा, इतने मर गए, वहां पर युद्ध में इतने काम आ गए, और वहां पर ये एक मकान गिरा, इतने मर गया, वहां आग जला के वियतनाम में एक लड़की मर गई। बोलो आज समाचार ठीक है, मुंह में ताव देखे। जब कोई मर भी ला जाए तो समाचार ठीक है, ये योजना बनी, वहां सड़क पास हो गई, मार सर भी चाय पी के भीतर बैठ के बतिया होते, कुछ नहीं हो समाचार में, कुछ है ये नहीं। और दोपहर में 2 गाने आवे वहां से, गोरखपुर से कहीं से रेडियो में, रमई काका का विदेशिया और बिरहिया, वो जरूर सुने। बोले दो सुन ले दे, बड़ा बढ़िया गावत है। तुम आई ली, तुम रुठ ली, तुम गई ली, हम लोगों को समझ में तो आवे ही ना। वो दो जरूर सुने, फिर वो खोखा पड़ा रहे 24 घंटे। महाराज के पास ऐसे ही फेंका रहे, उस दिन का इसको अंदर रखो, रखवा दिया। जीवन पहली बार फाटक बंद। बनारस के त्रिवेदी जी हैं मास्टर, वो पहुंचे हुए थे उस दिन। शरीर त्यागते समय क्या होता है, अवध का प्रभाव क्या होता है, हम यही बता रहे थे ब्रह्म विद्या की पैटर्न पर। जब तक हम बता रहे थे महाराज बैठे सुन रहे थे, पी रहे थे, चिलम पकड़ा दिया। एक रघुवीर दास जी थे, राम कुमार नाम का यादव, उस समय यादव शब्द प्रचलन में नहीं था, अहीर सेवक और 2-3 और बोले लियो, ये आखिरी चिलम है, अब मैं नहीं पीऊं। ये चिलम हमारा संस्कार था, आज संस्कार पूरा हो गया, मैं चिलम के हाथ ने लगाई, लियो। तो सब उदास हो गए, महाराज के बल पर तो सब दम लगाते रहे, महाराज ने पी हम कहां पाएंगे। तो महाराज तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को हमारा आशीर्वाद है, तुम लोगों को खूब पीने को मिलेगा गांजा। आशीर्वाद दिया, चिलम दे दिया, रखवा दिया, बैठ गए। और वो जो आए थे मास्टर साहब, उनका प्रश्न जो था कि अवध में तन त्यागने से पुनर्जन्म नहीं होता, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, तो इसका मतलब क्या। और हम ये समझा रहे थे, ये बढ़िया सत्संग का पहलू है, अंत में शरीर त्यागते समय कि अवध क्या है, अवध में तन त्यागने से पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अवध प्रभाव जान जब प्राणी जब उर्वशे राम धनु पानी, यही प्रसंग चल रहा था। तब तक तो बैठे बैठे सुन रहे थे, देख रहे थे हम लोगों की ओर। और जहां सत्संग समाप्त हुआ तो हम आए और पंखा हमने ले लिया, पंखा हमने हाथ में लिया, बैठे थे हम चलाने लगे। हमको लोग चलाने नहीं देते रहे, लेकिन हमारा भाव रहेंगे हम चलावे। हम ले लिया, जो तीन चार बार ऐसे आका तो राम कुमार दौड़ के आया, हमारे हाथ से ले लिया। तो हम इधर कुएं के पास आके खड़े हो गए, हमारे हाथ से वो छीन के ले रहा था, हमने छोड़ दिया, हम लोग को झगड़ा कर दे दिया। और महाराज लेट रहे थे तो झटके से लेटे। हम बोले महाराज झटके से क्यों लेटे, हमने उतनी झोपड़ी इतनी दूर कुएं के पास खड़े हो गए जहां पानी भरा जाता उसको पकड़ के। इतने में रामकुमार दौड़ के आया हमारे पास, स्वामी जी स्वामी जी, महाराज के मुंह से एक बात निकली। तो हम भी आके देखा तो शरीर ठंडा था, सांस भी नहीं दिखाई दे रही थी। हम बोले बवाल क्या है, जहां हमने हाथ पकड़ा बढ़िया सगुन मिलने लगा, पूरा दहिना अंग फड़कने लगा, ब्रह्मांड फड़कने लगा। हम बोले तब हम सोचे उठ के बैठ जाएंगे, लेकिन जो शरीर ठंडा है इसलिए तुरंत दौड़ाया लोगों को। रात को 2 बजे डॉक्टर आया, वो करवी से उसने बताया महाराज तो शरीर में नहीं है, फिर भी बढ़िया सगुन होता रहा। हमने सुन रखा था दशरथ का शरीर तेल में डुबा के रखा गया था, उस सुनी सुनाई बात पर 4-6 टिन्नर तेल तुरंत मंगवाया और लोहे की नाव बनवा डाले और उसी में लेटा के तेल भर दिया। तेल कुछ हमें कम प्रतीत हुआ तो सरसों डाल दिया उसमें, तो सरसों नीचे चली जाए तो तेल ऊपर आ जाए, फिर भर गया फुल। पूज्य परमहंस महाराज जी का महाप्रयाण ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी 23 मई 1969 को हुआ था। 4 दिन में जो भगत संत शिष्य दूर दराज में थे वो सब इकट्ठे हो गए और हमें बराबर शगुन मिल रहा था, बिल्कुल ठीक। हम सोचे उठ के बैठ जाइए और फिर बाद में समाधि दी गई तब भी शगुन मिल रहा था। समाधि हो भी गई, जो महाराज का सामान था समाधि में सब डाल दिया गया, गांजा भी चिलम भी कमंडल भी जो कुछ सामान था सब, फिर भी शगुन मिलता रहा। इसका मतलब था देह त्याग का यही उचित समय था, इसलिए शगुन मिल रहा था। और जहां महाराज का वो भंडारा बीतता हुआ 18 दिन पर, तो जितने महाराज के शिष्य थे सब भाग गए, हम बचे अकेले। हम भगोड़े नहीं थे, मंगल अहिर पक्का सेवक, गाय रखा सेवा किया करे। उसका भतीजा एक बबुआ लड़का आया जाया करे मंगल के पास, बोले ठीक है रे एक यहाँ रहे दे, यहाँ भले आदमी कभी कभी आ जाते हैं तो पानी पिलाया करेगा। महाराज का नियम था किसी साधु के द्वारा किसी को पानी न पिलवाने, साधु की एक मर्यादा होती है, गृहस्थों को पानी गृहस्थ के द्वारा लड़कों के द्वारा ही पिलवाया करे, साधु न पिलावे। गुरु महाराज की पक्की मर्यादा थी तो लड़कुआ रहता रहा, कोई नहीं।
और गायें जितनी थी वो हम सब पंडितों को दान दे दी। करीब 15 गाय थी उस समय तक, सब दे दिया। बोले महाराज गोदान होते हम, बोले जोन महाराज की है सब ले लो तुम लोग, सब दे दिया। कुछ भी नहीं, अब गाय नहीं, कुछ नहीं, बस खंडहर भर है और अब हम अकेले बच्चे। और वो लड़कवा, हम बोले बेटा रोटी बना, जो आवे उके खिला। बोले हो स्वामी जी, बड़ा मधुर बोला करे। फिर समाधि बनने लगी। समाधि में हमारी रुचि थी क्योंकि गुरु महाराज की समाधि थी ना, इसलिए। करीब आधी बन गई तो हम सोचे जंगल का आश्रम, एक बाबा आए तो 4-6 दिन रहे, वो भाग्य, जो आवे तो हम बड़ा प्रेम से रखें, बड़ा स्वागत से रखें, जोने में पड़े रहे 1-2 भले, जितना स्वागत से रखें उतना ही टिन्ना है। बोले अब मैं जा रहा हूं। अरे महाराज आप ही तो एक महापुरुष हैं, यहाँ आएंगे तो लोग किसका दर्शन करेंगे, आप दिव्य मूर्ति यहाँ विराजे। रुक जाए फिर झोला झंडी उठावे और चल दें तो फिर मना के रख लें। तब हमने गुरु महाराज से कहा महाराज ये जंगल का आश्रम जो ही आता टिना के भागत है, क्या बात है। तब महाराज ने दर्शन दिया, आश्रम में बैठे बैठे करी, तू काहे चिंता करे थे, मैं आश्रम पे बैठा हूं, मैं देखत हूं, तू का करे का चिंता करे थे। दर्शन दिया आसन में बैठे बैठे, हम निश्चिंत हो गए। हम बोले रहो चाहे जाओ हमसे मतलब नहीं, हम निर्द्वंद हो गए। समाधि भी बन गई। भंडारे के पश्चात पूज्य भगवान आनंद जी महाराज को इस गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया जबरदस्ती, वो बैठना नहीं चाहते थे। उसमें बैठने का अधिकार मर्यादा से स्वामी सच्चिदानंद जी का था और उन्हीं का है भी, तो टाल मटाल करते चले गए क्योंकि धारकुनी में एकांत था। अनुसुईया भी अभी एकांत ही है लेकिन वो इनकार करते चले गए, तो इनको अभिषिक्त कर दिया। तब समाधि बनी चुकी थी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई। तब फिर हम वहां से बस निकल गए, छुट्टी पा गए, जाके एकांत में कहीं भजन करने लग गए। और अनुसुईया महाराज ने विधिवत चलाना शुरू किया। गुरु महाराज एक बार था बराबर बताया करें कि अयोध्या में एक अमावा का मंदिर, बड़ा बढ़िया मंदिर मैं देखे हूं, अमावा स्टेट राजा का मंदिर, बड़ा सुंदर बना हो, चिकना चिकना। मोर मन है कि एक मैं हूं बनवाऊं। तो महापुरुष की एक बाणी, महाराज ने तो कुछ नहीं बनवाया, जो भगवान आनंद जी महाराज गद्दी में बैठे ये बातें वो सबने सुन रखी थी। भगवान आनंद जी के द्वारा फिर दो मंदिर बन गए, एक रामकोला एक अनुसुईया, और तो साधारण। शायद गुरु महाराज को संकल्प की पीछा करता रहो, संकल्प की पूर्ति में लग गए हो। भगवान आनंद जी त्यागी मूर्ति थे लेकिन गुरु महाराज के संकल्प के लिए प्राणपन से लग जाया करें। अंत में जब भगवान आनंद जी के भी शरीर छूटने का समय करीब आया तो बोले देखो हमने जो कुछ बनाया है वो सब भी तुम ले लो, हमारे पास कोई योग्य नहीं है।
तब गुरु महाराज ने हमको मना किया तुम मत लेना। हमने कहा महाराज बीमारी तो है, ये आती जाती रहती है, आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। और बस चुपचाप वहां से प्रणाम किया सादर और चले आए। 1 महीने बाद शरीर छूट गया, वो भी चले गए। वो मंदिर हम लोगों के क्षेत्र की वस्तु तो नहीं, महाराज का संकल्प था शायद उसी के पीछे लगे। तो मंदिर मंदिर होता है, वहां पूजा पाठ अपने ढंग से करते रहते हैं लोग। ये मंदिर स्तूप चबूतरे कुछ भी प्रतीक बनाकर महापुरुषों की स्मृतियां संजोई जाती है, जिससे भविष्य में लोगों को मार्गदर्शन प्रेरणा मिलती रहे। भगवान राम वनवास काल में हजारों ऋषियों से मिले, सब जगह सत्संग मिला, धूना जलता मिला, मुनि लोग ध्यानस्थ मिले, कथा वार्ता साधना करते हुए साधक, सेवा करते हुए सेवक, लेकिन किसी भी आश्रम में, इन सहस्रों आश्रम में राम जी रुके भी कहीं 2 महीना 1 महीना 6 महीना, मंदिर कहीं नहीं मिला। और तपोधन थे, अत्रि आश्रम सर्वभंग सुतीक्षण अगस्त, क्यों क्यों एकांत सेवी चिंतन रत महापुरुष थे। गुरु महाराज की विद्या अबाध गति से आज भी चल रही है। जहां था जिसके पास विद्या होती वो मंदिरों में नहीं रहता, वो मंदिरों में रह के तो हो ही नहीं सकती। वो साधक जहां था विद्या पकड़ के एकांत में आज भी चिंतन रत हैं, सदैव रहेंगे। अनादि काल से जिसका नाम ब्रह्म विद्या है आज तक तो नष्ट नहीं हुई, आगे भी यथावत चलती ही रहेगी, गोपनीय विद्या है। गोस्वामी जी ने कहा विद्या के विषय में कही न कामी क्रोधी लोभी जो न बजे से चराचर स्वामी, द्विज द्रोही ने सुनाई है कबहू, सुरपति सरिस हो इंद्रपत बहू, गुरुपद प्रीति नीति रत जेऊ, राम कथा अधिकारी तेऊ, रामचरित अति गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात्मय पावा। रामचरित अत्यंत गोपनीय है, शंकर जी की कृपा से मैंने पाया है, मेरी कृपा से काक तूने प्राप्त किया है, तुम भी ध्यान रखना। राम भक्ति जिनके उर नाही कबहु न तात कहिए तिन पाही, जिसके हृदय में भक्ति न हो कभी मत कहना, ये अति गोपनीय है। रावण मरा तो सबने दीप जलाए, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सोकर, अरे खुशी मनाया सब तो जान गए, लेकिन ये महापुरुष कहते हैं कि रामचरित अति गोपनीय कोई नहीं जानता, शिव जानते मैं जानता हूं, मेरी कृपा से तू जानता है। तो वो है अध्यात्म विद्या, गोपनीय विद्या, ब्रह्म विद्या। गुरु महाराज की ये विद्या सर्वत्र भी प्रसारित है। सत्संग चाहे हम लोग लाख सुनावे, अधिकारी साधकों के को ही मिला करती है आज भी, और वो अपने ढंग से बराबर जब उस जपते में उसी के सहारे साधना में प्रवृत्त रहते हैं। मानस का ही एक अर्थ विशेष है, उसी अर्थ में उपनिषद गठे हुए हैं, उसी में गीता गठी हुई, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।